आप सुन रहे हैं महाभारत के पात्र सर ऑडियो पिटारा पर मेरे यानी अनामय वर्मा के साथ। जो बात मैंने पहले कही थी कि जब धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ था तब तक भीष्म पितामह की आयु 65 वर्ष की हो चुकी थी, वो तथ्यात्मक रूप से सही सिद्ध होती है। साथ ही ये भी याद रखना आवश्यक है कि जब युवराज पांडु का राज्याभिषेक हुआ उस समय उनकी आयु 18 वर्ष की थी। महाराज पांडु ने लगभग 12 वर्ष तक हस्तिनापुर पर शासन किया था, यानी महाराज पांडु के बाद जब धृतराष्ट्र सिंहासन पर विराजे तब भीष्म पितामह की आयु 65 + 18 + 12 यानी 95 वर्ष थी, और ये गणना भी सही है। इसके बाद अगले 4-5 वर्षों में धृतराष्ट्र और पांडु की संतानों का जन्म हुआ। तब तक भीष्म लगभग 100 वर्ष के हो चुके थे। उसके बाद लाक्षाग्रह की घटना एक और पुख्ता तथ्य है। लाक्षाग्रह की घटना के समय दुर्योधन की आयु 20 वर्ष थी, अर्थात भीष्म पितामह तब तक 120 वर्ष के हो चुके थे। आयुर्वेद के अनुसार मनुष्य की आयु लगभग 100 से 120 साल होती है, लेकिन कोई चाहे तो अपने योग बल से इसे बढ़ा भी सकता है। यही कारण है कि कई साधु संतों के 300 से 500 साल तक जीने की कथाएं हमें अक्सर सुनने को मिलती हैं। महाभारत की गणना के अनुसार पांडवों द्वारा इंद्रप्रस्थ की स्थापना के समय महाराज युधिष्ठिर की आयु लगभग 32 वर्ष थी। इसका अर्थ हुआ कि तब भीष्म पितामह 132 वर्ष के हो चुके थे। रणभूमि में तब भीष्म ने इतना भयंकर युद्ध किया था कि भगवान कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर उन्हें रोकने के लिए लपकना पड़ा। तब अर्जुन ने उनके पांव पकड़कर उन्हें रोक लिया था। इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर का शासन लगभग 25 वर्ष तक चला। उसके बाद उन्होंने राजसूय यज्ञ किया। उस समय युधिष्ठिर 57 के थे और भीष्म पितामह 157 वर्ष के हो चुके थे। राजसूय यज्ञ के दौरान ही धृत क्रीड़ा का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें पांडवों को अपना सारा राजपाट गंवाना पड़ा था। इसमें उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला, अर्थात ये समय पूरा करने के बाद युधिष्ठिर 57 + 13 यानी 70 वर्ष के हो चुके थे। तब भीष्म की आयु 157 + 13 170 वर्ष थी। कुछ महीनों के वाद विवाद के बाद ही महाभारत का युद्ध हुआ, यानी इन 4-5 महीनों को छोड़ भी दें तब भी युद्ध के समय भीष्म पितामह 170 वर्ष से ऊपर ही थे। महाभारत का युद्ध लगभग 18 दिन चला। उत्तरायण की प्रतीक्षा में भीष्म पितामह ने लगभग 58 दिन बाणों की शैया पर काटे। भरत वंश शिरोमणि भीष्म पितामह जब शर शैया पर पड़े हुए थे, अपने अंत समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो उनके दर्शन के लिए उस समय कुरुक्षेत्र में नारद जी, पर्वत मुनि, वेद व्यास जी, वृहत्स्व, भारद्वाज ऋषि, वशिष्ठ जी, त्रित, इंद्रमद, परशुराम जी, गृत्स्मद, असित, गौतम ऋषि, सुदर्शन, काक्षीवान, विश्वामित्र जी, शुकदेव, कश्यप ऋषि, महर्षि अंगीरा आदि ब्रह्मार्षि, देवार्षि और राजर्षि अपने शिष्यों को लेकर उपस्थित हुए थे। अपने वंश के नाश से अत्यंत दुखी पांडव भी तब भगवान श्री कृष्ण के साथ भीष्म पितामह के पास गए। वे सब बड़े ही विनम्र भाव से पितामह के पास जाकर बैठे। उन सबको देखकर भीष्म पितामह की आंखों से प्रेमाश्रु छलक उठे थे। तब पितामह ने अपने अत्यंत प्रिय पांडवों से कहा था, हे धर्मावतारों, आप लोगों को धर्म का आश्रय लेते हुए एवं श्री कृष्ण की शरण में रहते हुए भी इतने कष्ट सहने पड़े, यह अत्यंत दुख का विषय है। आपके पिता के स्वर्गवासी हो जाने के पश्चात रानी कुंती ने बड़े कष्टों से आप सबको पाला। युवा होने पर दुर्योधन ने आप सबको अत्यंत कष्ट दिया, परंतु ये सारी घटनाएं इन्हीं श्री कृष्ण की लीलाओं के कारण हुई है। श्री कृष्ण अपने भक्तों को कष्ट में डालकर उन्हें अपनी भक्ति देते हैं। जहां धर्मराज, युधिष्ठिर, पवन पुत्र भीमसेन, गांडीवधारी अर्जुन और रक्षक स्वरूप स्वयं भगवान कृष्ण हो, वहां विपत्तियां हार ही जाती हैं। किंतु इन भगवान श्री कृष्ण की लीला को बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी भी नहीं जान सकते। सृष्टि की सारी घटनाएं ईश्वर के अधीन है। अतः शोक और वेदना को त्याग कर प्रजा का पालन करो और सदा भगवान श्री कृष्ण के शरण में रहो। पितामह के आशीर्वाद वचन सुनकर पांडव धन्य हो गए। पितामह वहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान साक्षात ईश्वर है। हम सबको अपनी माया से मोहित कर यदु वंश में अवतीर्ण हुए हैं। आप सब इन्हें मामा का पुत्र, अपना भाई और हितु ही मानते हैं। आपने इन्हें प्रेम पाश में बांध कर अपना दूत, मंत्री और यहां तक कि सारथी बना लिया है। इनसे अतिथियों के चरण भी धुलवाए। श्री कृष्ण समदर्शी हैं, फिर भी अपने भक्तों पर ये विशेष कृपा करते हैं। तभी तो मेरे अंत समय में भगवान मुझे दर्शन देने के लिए यह पधारे हैं। मेरी यही कामना है कि इन्हीं के दर्शन करते हुए मैं अपना शरीर त्याग दूं। धर्मराज युधिष्ठिर ने शरशय्या पर पड़े हुए भीष्म पितामह से सभी ब्रह्मर्षियों और देवर्षियों के सामने धर्म के विषय में अनेक प्रश्न पूछे। तत्वज्ञानी और धर्मवेत्ता भीष्म ने वर्षाश्रम, राग वैराग्य, निवृत्ति प्रवृत्ति आदि के संबंध में अनेक रहस्यम भेद समझाए और दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म और द्विध धर्म आदि के विषय में विस्तार से चर्चा की। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के साधनों का भी उत्तम विधि से वर्णन किया। समय तीव्र बीता और उत्तरायण में सूर्य आ गए। अपनी मृत्यु का उत्तम समय जानकर पितामह ने अपनी वाणी को संयम में करके मन को संपूर्ण रागादि से हटाकर सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना चतुर्भुज रूप धारण करके दर्शन दिए। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण की मोहिनी छवि पर अपने नेत्र एक टक लगा दिए और भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। मैं अपने इस शुद्ध मन को देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करता हूं, जो भगवान अकर्मा होते हुए भी अपनी लीला विलास के लिए योग माया द्वारा इस संसार की सृष्टि रचकर लीला करते हैं, जिनका श्याम वर्ण है, जिनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान है, जो पीतांबर धारी है तथा चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं कंठ में कौस्तुभ मणि और वक्ष स्थल पर वनमाला धारण किए हुए हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा मन समर्पित हो। इस तरह से भीष्म पितामह ने भगवान के आत्म स्वरूप का ध्यान किया और स्वयं को उसमें लीन कर दिया। देवताओं द्वारा आकाश से पुष्प वर्षा हुई और धर्मराज युधिष्ठिर ने पितामह की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और ऑडियो स्टोरीज के लिए सुनते रहिए ऑडियो पिटारा।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।